हेलो एवरीवन, आई एम वैभवी पांडे और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे पॉडकास्ट चैनल लेट्स नो मोर विद पांडे पर, जहां हम कभी खुद को, कभी दूसरों को और कभी अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कुछ कहानियों, इंटरव्यूज और दिल से दिल तक की बातों के जरिए। पिछले एपिसोड्स में हमने जिंदगी से जुड़े छोटी छोटी बातों और जज्बातों को समझा और ये जाना कि हम सबकी आम जिंदगियां किसी ना किसी हिस्से में बहुत खास हैं। आज के एपिसोड में मैं ऐसी ही एक आम जिंदगी के बहुत खास पहलू को इंटरव्यू लूंगी और एक कलाकार के नज़रिए से आप सबको दुनिया दिखाने की कोशिश करूंगी। आज की हमारी गेस्ट हैं दीक्षा मान, जो कि अभिनय यानी एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बना रही हैं। इन्होंने बीकानेर से इंजीनियरिंग करी और जयपुर से थिएटर करके मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन थिएटर आर्ट करा। जी हाँ, आप सभी की तरह मेरे लिए थिएटर का मतलब बॉलीवुड फिल्म्स होता है, पर इस इंटरव्यू ने मुझे थोड़े ही समय में एक बहुत ही डिफरेंट, सुंदर और एक अलग दुनिया दिखाई। तो आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दीक्षा, आई वेलकम यू टू द शो लेट्स नो मोर विद पांडे।
थैंक यू सो मच वैभवी फॉर हैविंग मी। और मुझे मतलब मैं जो सुनती हूँ ये लेट्स नो मोर विद पांडे, तो मुझे बहुत मजा आता है कि एक अलग नजरिया जो मिलता है इससे वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
थैंक यू।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसको सुनते हैं और ये आपकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाया है। तो आइए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने लिसनर्स को बताया कि आपने इंजीनियरिंग करी है, तो साइंस के माइंडसेट से इस आर्ट की फॉर्म को समझने के लिए वो क्या मोटिवेशन थी जिसने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया वो डिटर्मिनेशन कि आपने थिएटर करा और फिर आगे अपनी मास्टर्स परस्यू करी इसके अंदर?
जब मैं चूज कर रही थी मैं इंजीनियरिंग, तब भी मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। वो हमेशा चाहते थे कि हम कुछ अलग करें और भेड़ चाल में ना जाएं। बट क्योंकि हम जहाँ पे थे वहाँ से हमें बहुत सारे ऑप्शंस पता नहीं थे और बड़ी यदि इंजीनियरिंग बन चुकी थी तो हमें वही पता था कि क्योंकि हमने 12th साइंस से किया है तो हम इंजीनियर ही बन सकते हैं, दैट्स ऑल वी नो। सो हमने इंजीनियरिंग की। मेरे भाई जो जयपुर में पढ़ रहा था, मेरे ट्विन ब्रदर दीपक, तो उसने वहाँ पे थिएटर ज्वाइन कर लिया था, इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, एक सबसे अच्छी, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी थिएटर की जो फॉर्म चली आ रही है वो है।
अच्छा।
तो मैं और दीपक हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कुछ अलग करना, पर वो क्या अलग था वो कभी नहीं पता था। इवेंचुअली उसने ढूंढ लिया उसको और हम थिएटर तक पहुंच गए।
कुछ अलग करने की इच्छा अपने आप रास्ते दिखा देती है। तो दीक्षा, क्या ऐसा था कि स्कूल में या फिर कॉलेज में कभी थिएटर और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कराओ?
टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, बहुत लोग जानते भी नहीं है थिएटर के बारे में और मैं खुद भी नहीं जानती थी। बस क्योंकि हम शो पे हमने पढ़े वहाँ पे प्लेज वगैरह होते थे, हमें पता था कि प्लेज होते हैं।
तो थिएटर पहले कभी नहीं करा था आपने, तो जब वहाँ पर गए पहली बार तो कैसा लगा?
तो लकीली मैं एक अच्छे टीचर से मिली वहाँ पे जिनका नाम हेमंत थपलियाल है, तो मैं उनसे मिली और उन्होंने जिस तरह से हमको वर्कशॉप में चीजें छोटी छोटी चीजों से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन देते थे वो हमें कि अभी तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो, तुम क्या करोगे उसमें, एक्ट करो उस चीज को। और वहां जाके मुझे ये वाली चीज समझ में आई कि पहले हम जो इतने सालों से पढ़ाई करते आ रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा था कभी भी, ये एक ऐसी चीज मिली कि इसमें मजा आ रहा है मेरे को, मतलब पढ़ना ही है। सबको ऐसा लगता है कि थिएटर में जाएंगे तो हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इवेंचुअली यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, आपके पास इतनी सारी किताब होती है, इतने सारे राइटर्स हैं, प्ले राइट्स हैं, उनकी किताबें आप पढ़ लो एक जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
हाँ, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि एक बार आपको अपने पैशन वाली चीज मिल गई तो फिर आपको वो पढ़ना या उसमें काम करना एफर्टलेस लगने लग जाता है।
कोडिंग वगैरह भी इंटरेस्टिंग होती थी, हमारे साथ के कुछ लोग थे उनको बड़ा इंटरेस्ट आता था, वो सारे टाइम उसमें लगे रहते थे। पर मुझे उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आया, तो वही इंटरेस्ट की बात है जो आप तूने कही कि वो पैशन वाली चीज होती है तो अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, लेना नहीं पड़ता उसमें इंटरेस्ट।
तो मुंबई में जाके जो मास्टर्स में थिएटर का एक्सपीरियंस था, दोस्त थे, उनके साथ की लाइफ कैसी रही?
मास्टर्स में जब मैं आई तो यहाँ पे मैंने वो ट्रू कॉलेज डेज दिए हैं मेरे, क्योंकि हम सबका देखने का नजरिया एक बदलता रहता है क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं प्लेज वगैरह के साथ, और हमें बहुत अच्छी चीज सबसे पहले मिलन सर ने सिखाई थी, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपको खुद के बारे में लिखना होता है, जो आप कितने भी बुरे हो कितने भी अच्छे हो सिर्फ खुद के लिए लिखना है, आपको खुद से सच बोलना है और किसी को नहीं दिखाना है, उसको जला दो चाहिए लिख के, ठीक है, पर खुद से सच्चा रहना है। तो ये वाली जो चीज है उसके कारण सब में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए, और मतलब इस तरह से हो गया था कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन लड़का है कौन लड़की है, सब ये चल रहा होता है, तो आपको वहीं पे कॉस्ट्यूम चेंज करनी होती है कई बार विंग्स में, क्योंकि आपके 2 मिनट बाद एंट्री होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे एक लड़की कपड़े चेंज कर रही होगी तो सब लड़के उसको देख रहे हैं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं देख रहा होता, सबका ध्यान अपने अपने कैरेक्टर पे होता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अगर किसी को जल्दी जल्दी में 2 मिनट में ड्रेस चेंज करके जानी है, सब उसको जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कपड़े पहना रहे हैं, उतरवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, फटाफट फटाफट ऐसा होता रहता है, तो उसके कारण बहुत सारे नोशंस टूट जाते हैं लड़कों के भी लड़कियों के भी, और वो एक अलग मतलब एक्चुअल ह्यूमन की तरह पेश आने लगते हैं, तो वो ज्यादा इसलिए ज्यादा मजा दिखता है दूसरों को भी और हमको तो आता ही है ऑब्वियसली। जो रिलीजन जाति और ये सब जो अंदर अंदर घुस के जो चीजें बैठी हुई हैं वो सब निकल जाती हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था कि अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर रहता था हमारा।
तो जैसा कि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई भी थिएटर आर्टिस्ट, मान लीजिए उसको जितना पैसा बॉलीवुड में मिल रहा है उतना ही थिएटर में मिले, तो क्या वो कभी बॉलीवुड में जाना चाहेगा?
देखो सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, मतलब बॉलीवुड क्योंकि उसको इंडस्ट्री का एक नाम दे दिया गया है कि बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह, बट ये दोनों एक मीडियम है, और थिएटर का जो एक थिएटर जो मीडियम है उसमें आप लाइव कनेक्ट होते हैं, ये वैसा ही है जैसे अभी मैं और तुम बात कर रहे हैं फोन पे, बट जब हम पर्सन टू पर्सन मिलेंगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो कभी भी फोन टू फोन वाले एक्सपीरियंस से मैच नहीं हो सकता। वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है कि हम पर्सन टू पर्सन बैठ के बातें करते हैं, तब हम एक दूसरे को और ज्यादा समझ पाते हैं, तो थिएटर और फिल्म में उतना ही डिफरेंस है कि थिएटर में जब आप पर्सन टू पर्सन सामने बैठे होते हैं ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है एक्टर के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एज ए जो थिएटर आर्टिस्ट है, मतलब मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो थिएटर आर्टिस्ट को पूरा एक वो लाइव जो मौका मिलता है ना, वो ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कंपैरिजन टू सिनेमा। सिनेमा में तब मजा आता है जब आपके पास एक बहुत फुल लेंथ कैरेक्टर हो, और सिनेमा जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, और थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टर दिखता है, एक बार एक्टर स्टेज पे चला गया डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, फिर जो एक्टर इम्प्रोवाइज करेगा वहां पे वही होगा, वही ऑडियंस को दिखेगा चाहे प्ले कुछ भी हो, बट सिनेमा में डायरेक्टर उसको कभी भी कट कर सकता है, तो वो एक्टर्स मीडियम नहीं है, तो एक एक्टर के लिए थिएटर ज्यादा बेटर रहता है।
तो जब हम लोग जैसे ये 8 मूवीज होती हैं, मसान, गैंग्स ऑफ वसेपुर, लंच बॉक्स, तो इन सब मूवीज को देख के लोगों के दिमाग में एक नया क्राइटेरिया डेवलप हुआ है कि जो लोग थिएटर में काम करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो ज्यादा अच्छे एक्टर्स होते हैं, और लोगों ने आजकल इस चीज को बहुत अच्छे नजरिए से लेना शुरू कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को इस चीज का बहुत फायदा हुआ है। तो कैसे थिएटर आर्टिस्ट जो है वो बॉलीवुड में इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं?
थिएटर से नहीं पर आर्ट से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि थिएटर जो है बेसिकली ज्यादा आर्ट से रिलेटेड है, हालांकि थिएटर में भी फिर कमर्शियल थिएटर आ गया तो वहां पे भी आर्ट पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पैसे पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जब बिजनेस आ जाता है आर्ट के अंदर तो फिर आर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और ये हर चीज में है, एजुकेशन में बिजनेस आ जाता है तो एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी क्वालिटी चली जाती है और क्वांटिटी बनने लग जाती है क्योंकि सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो थिएटर आर्टिस्ट का इसके अंदर मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि क्योंकि जब थिएटर कर रहे होते हो आप, तो आपको एक अलग अलग कैरेक्टर फुल लेंथ आपको जीने के लिए मिलते हैं, क्योंकि थिएटर में कैसा होता है कि आपकी 50 दिन रिहर्सल चलेगी, उसके बाद में आपका शो होगा,
अच्छा,
और 50 दिन जब आपकी रिहर्सल चलती है तो फिर आपके रन थ्रूज होते हैं, उसमें आप वैसा जैसे शो होता है वैसा ही आप एक पूरा लाइव परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं जो बिना कट के होता है, उसमें कोई कट नहीं होता. बट फिल्म्स में कट होता है, आप एक डायलॉग बोल के आए उसके बाद में कट, उसके बाद में आप इमोशन पे फिर से वर्क करो वगैरह वगैरह. तो थिएटर के जो एक लाइव परफॉर्मेंस करने की जो होता है ना, तो उसमें आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो खुद को. तो वो आर्टिस्ट जब कैमरा के सामने जाते हैं तो फिर उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं. हमेशा ये कहा जाता है कि एक्टर अपनी चॉइसेस से बनता है, तो एक्टर के पास बहुत सारी चॉइसेस बढ़ जाती हैं जब वो थिएटर करके आता है, क्योंकि उसने बहुत सारे लाइव एक्सपीरियंसेस लाइव कैरेक्टर्स जिए होते हैं. तो ये उसका फायदा है, जब वो कैमरा के सामने जाता है तो उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं ऑलरेडी. तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने कहा भी था कि एनएसडीएन है वो, उन्होंने कहा था कि मैंने एनएसडी में प्ले करते वक्त और मेरे पास इतने थिएटर करते वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट 70 या इतने कैरेक्टर तो ऑलरेडी हैं. जो आप मेरे को बोलोगे तो मैं अभी कर सकता हूँ. उसके वो 70 कैरेक्टर जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद में मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या नया गेम चेंज करूँ, मैं अपने अंदर क्या नई चीज ऐड करूँ, क्या नया ढूंढूँ. तो उन्हें होल्ड करना आता है ऑडियंस को. जैसे मैंने पहले बताया था कि थिएटर में हम ये सीखते हैं कि हम ऑडियंस को होल्ड कैसे करेंगे. स्टेज पे आपको खड़ा कर दिया गया तो आप ऑडियंस को होल्ड करके कैसे रहोगे, तो वो वाली चीज कैमरा में भी कर पा रहे हैं कि ऑडियंस को होल्ड करके कैसे रखें. फिर उसके लिए उनको डांस या फिर अगर चीजें करने नहीं पड़ती. तो जब स्ट्रांग कंटेंट होता है तो स्ट्रांग एक्टर भी चाहिए जो उस चीज को पुल कर सके. फिर आप हर किसी को नहीं ले सकते उसमें, तो वहां पे थिएटर एक्टर्स की जरूरत पड़ती है.
हाँ, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत सुंदर है. इन सारी मूवीज़ ने हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डाला है. और जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब करा एक थिएटर आर्टिस्ट के काम को, तो उसने मुझे उसको और पसंद करवा दिया है. तो बीइंग एन आर्टिस्ट और एक्टर, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है अपनी ऑडियंस से?
पर्सनली मैं एक्सपेक्ट तो यही करती हूँ कि ऑडियंस अच्छे कंटेंट को देखने जाए. अच्छा कंटेंट जो कि मतलब, क्योंकि क्या हो रहा है कि बॉलीवुड में बहुत टाइम से, और ये बॉलीवुड की गलती नहीं है क्योंकि ऑडियंस ऐसी है, हमारी ऑडियंस सिर्फ लव स्टोरीज देखना चाहती है तो सिर्फ लव स्टोरीज बनती हैं. एकता कपूर ने नब्ज पकड़ लिया कि जो औरतें हैं घरेलू औरतें हैं उनको सिर्फ सास बहू और इनकी, क्योंकि उनकी जिंदगी में वही चीज चल रही होती है और हम अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन देखने जाते हैं, तो उन्होंने वो नब्ज पकड़ ली है कि तो इसलिए वही चीज चली जा रही है और हम देखे जा रहे हैं उसको. तो हमें जरूरत है कि ऑडियंस भी उस चीज को देखे कि क्या बन रहा है, पूरी दुनिया में क्या बन रहा है. वो एक छोटे कुएं के मेंढक नहीं बने कि हम बस, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत अलग अलग लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बन रही है. कैपर्नम है, अ सेपरेशन है, बहुत सुंदर सुंदर मूवीज है जिनको देखते हो तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप मूवी देख रहे हो. तो हमें हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा और ग्रो करने की जरूरत है. यही एक्सपेक्ट करती हूँ मैं तो, कि वो कंटेंट को देखने जाए, ना कि स्टार्स को या फिर सिर्फ एक इंसान की शक्ल को देखने जाए. क्योंकि उस चीज में क्या होता है कि कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो कंटेंट रूइन हो जाता है पूरा, कि इस एक्टर से कितना हो पा रहा है या फिर इस स्टार से ये चीज हो पाएगी क्या, ये इमोशन या फिर ये इमोशनल थोड़ा सा नहीं है, ये डांस में ज्यादा अच्छा है तो फिल्म में डांस ज्यादा डाल दिया. तो वो स्टोरीज उस तरह से मोल्ड कर देते हैं, उसकी वजह से कंटेंट खराब हो रहा है बहुत टाइम से और धीरे धीरे स्तर गिरता ही जा रहा है हमारा. तो हालांकि मुझे लगता है कि अभी पाताल लोक जैसी वेब सीरीज आई हैं तो उसके बाद में शायद लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगने लगा हो कि हाँ ये अच्छा कंटेंट बन रहा है. तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करके बैठी हूँ कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऑडियंस थोड़ी अच्छी ग्रो होके निकलेगी और अच्छे कंटेंट की तरफ जाएगी.
तो दीक्षा, ऐसे कौन से थिएटर आर्टिस्ट, कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में और आपके डिसीजंस को मोटिवेट किया?
ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मैं इरफान खान सर को बहुत ज्यादा मानती थी और मैंने सोचा था कि कभी मैं उनसे मिलूंगी, बट इवेंचुअली वो नहीं हो पाया. तो सब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो उन्होंने ही डाला है, क्योंकि वो थिएटर भी उन्होंने किया और कैमरा पे एक नेचुरल एक्टिंग भी की, जो बहुत जो कभी कभार जो थिएटर एक्ट्रेस होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो उनकी ये चीज थी कि वो थिएटर भी किया उन्होंने, बट वो लाउडनेस नहीं आई, उन्होंने उतना ही नेचुरल रखा उसको. और उसमें क्योंकि उन्हें मैजिशियन कहा जाता है, क्योंकि वो कुछ भी एक छोटी सी चीज ऐसे कर देते थे कि आप देखते थे अरे ये क्या कर दिया वाह. तो वो अपने हर कैरेक्टर को जिंदा कर देते थे, तो वो उनकी बात मुझे बहुत पसंद थी। और भी बहुत सारे हैं।
बिल्कुल, इरफान खान सर अब हम लोगों के साथ नहीं रहे, लेकिन जो एक कलाकार है वो हमेशा अपने किरदारों में हम लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। तो दीक्षा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने इस एक्टिंग करियर में करना चाहती हैं, जो आपकी टॉप लिस्ट में ऐसा टिक होता है ना कि ये हाँ ये करना चाहती हूँ ये करना चाहती हूँ, तो ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो आप करना चाहती हैं?
टॉप थ्री थिंग्स, ऐसे कोई बकेट लिस्ट तो नहीं बनाई मैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट कर पाऊँ, मुझे अच्छा कंटेंट करने को मिले और अच्छा कंटेंट मैं लोगों तक भी पहुँचा पाऊँ। और जिस तरह से इरफान खान ने पूरा एक नजरिया बदल दिया था, हम आर्ट सिनेमा को भी देखने चालू कर दिया था हमने, तो उस चीज को मैं आगे बढ़ा पाऊँ कि लोग उससे कनेक्टेड रहें।
बिल्कुल, बेशक आपकी ये सारी इच्छाएं जल्दी से पूरी हों और आप बहुत अच्छा कंटेंट दें हम लोगों को और बहुत अच्छी एक्टिंग करें। तो दीक्षा, आप कुछ हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहेंगी?
यही चीज कहना चाहूंगी कि अच्छा कंटेंट देखो यार, अच्छा कंटेंट देखो जिसमें कंटेंट देख के या स्टोरी देख के तुमको मजा आए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि सेल्फ असेसमेंट जो चीज है वो सिर्फ एक्ट्रेस के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, वो एज ए पर्सन हम सबको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो सेल्फ असेसमेंट करो, ज्यादा दिक्कतें दुनिया में इसीलिए क्योंकि इंसान खुद को ही नहीं जानता है, तो वो दूसरे को जानने की कोशिश करता रहता है और उसके बारे में अनुमान लगाता रहता है कि ये ऐसा है और फिर लड़ाइयाँ और पता नहीं क्या क्या होती है। तो खुद को जान लें हम तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है जिंदगी में। बस यही
दैट इज द ओनली बेसिक ऑफ लाइफ जिसके ऊपर सब चीज चलती है। नाइस नाइस,
थैंक यू सो मच दीक्षा फॉर योर टाइम, दिस रियली मीन्स अ लॉट। इसने हम सबको एक बहुत ही अलग तरीके से बॉलीवुड और थिएटर के डिफरेंस को समझाया है और आज पहली बार मैंने चीजों को बॉलीवुड के ढिंचैक नजरिए से हट के एक आर्ट की फॉर्म में देखने की कोशिश करी है। सो थैंक यू सो मच। और हमारे लिसनर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट ऑफ कि हम लोग एक थिएटर में हैं या नहीं है, हम सब अपनी ज़िंदगी में कलाकार हैं और जिस तरीके से हम लोगों को मूवीज़ में और हर जगह पे एक अच्छा कंटेंट देखना चाहिए, उसी तरीके से हम लोगों को अपनी ज़िंदगियों में एक अच्छा कंटेंट परफॉर्म करना चाहिए।
एग्जैक्टली, वाह, ये चीज़ है जिसके लिए मैं ये सुनना पसंद करती हूँ कि हर बात में से एक अलग नज़रिया जो आप निकाल पाते हैं ना अपना।
मैं उम्मीद करती हूँ कि इंटरव्यू का ये पहला एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में फीडबैक भेजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और टॉपिक्स जिन पे हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है फेमस लोगों का इंटरव्यू तो हर कोई ले सकता है लेकिन उनसे रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी के खास पलों का इंटरव्यू लेकर हम सब अपनी ज़िंदगियों में और खूबसूरत चीज़ें देख सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और समझ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लेट्स नो मोर विद पांडे, मेरा फेसबुक हैंडल है वैभवी पांडे और हमारे आज के गेस्ट का इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलेगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तरा